मुख्य समाचारों में पुलिस अधिकारी जैचरी राल्फ 2019 में स्वदेशी कुमुंजे वॉकर की हत्या मामले में दोषी नहीं। विक्टोरियन लेबर सेनेटर किम्बरली कीचिंग की असामयिक मृत्यु पर सब तरफ से श्रद्धांजलि और भारत के प्रधानमंत्री ने राज्य चुनावों में पार्टी की जीत पर प्रकट किया आभार। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। नॉर्दर्न टेरिटरी के पुलिस अधिकारी जैचरी राल्फ को कुमुंजे वॉकर की हत्या का दोषी नहीं पाया गया है। पुलिस अधिकारी को हत्या और हिंसक कृत्य में शामिल होने के दो वैकल्पिक आरोपों से भी मुक्त कर दिया गया है, जिससे वॉकर की मृत्यु हो गई। मुकदमे में सुना गया कि 2019 में एलिस स्प्रिंग से दूर योंडुमू में 19 वर्षीय ने कांस्टेबल राल्फ पर कैंची से वार किया, जिससे अधिकारी ने वालेपेरी व्यक्ति पर 3 गोलियां चलाईं। अदालत के बाहर श्री वॉकर के परिवार और समर्थकों ने इस फैसले पर अपनी निराशा व्यक्त की।
It's another sad day. I just say, when? We are going to get justice. When?
रक्षा मंत्री पीटर डाटन का कहना है कि ऐसी विश्वसनीय रिपोर्ट्स हैं जिससे पता चलता है कि रूस यूक्रेन संघर्ष में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ब्रिटिश विदेश सचिव लिज ट्रस ने इन चिंताओं का समर्थन करते हुए चेतावनी दी है कि व्लादिमीर पुतिन के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल करना एक गंभीर गलती होगी। श्री डाटन ने चैनल 7 से कहा है कि हर कोई यूक्रेन के लिए शांतिपूर्ण परिणाम देखना चाहता है, लेकिन स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।
China can exert influence on President Putin because that's really, as I see it, one of the only exit strategies to get Putin out of the Ukraine as quickly as possible.
नेटो के पूर्व महासचिव का कहना है कि यूक्रेन पर एक नो फ्लाई जोन लागू करने का अभी भी विचार होना चाहिए। वैसे उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि रूस इसे युद्ध की घोषणा के रूप में मानेगा। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर स्काई न्यूज से बात करते हुए एंडर्स फोग रस्मुसन ने दावा किया कि पुतिन के संदर्भ में पश्चिम का सामना एक राजनीतिक गैंगस्टर के साथ है और यूक्रेन की स्थिति का मुकाबला करने के लिए किसी भी कार्यवाही को छोड़ना नहीं चाहिए।
First of all, I would declare economic war against Russia. I think that's what is needed here and now to stop the revenue from oil and gas purchase in Russia, to completely cut Russia off the international economic system. But concerning the no-fly zone, I think it should still be on the table. But let's be clear-eyed about this. The Russians would consider it a declaration of war.
फिलहाल संयुक्त राज्य अमेरिका और नेटो ने एक अनावश्यक खतरे से बचते हुए अब तक यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन के विचार को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2.3 मिलियन लोग अब तक यूक्रेन से भाग गए हैं और लगभग 20 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। इन रिपोर्ट्स के साथ कि रूसी रक्षा मंत्रालय शुक्रवार को युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है, संयुक्त राष्ट्र मानवीय आपूर्ति को सक्षम करने के लिए एक सुरक्षित मार्ग के लिए आह्वान कर रहा है। आशा है कि इस निर्णय से यूक्रेन से निकासी के लिए 5 शहरों से मानवीय गलियारे खुल सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक का कहना है कि नागरिकों को सुरक्षा से निकालने के लिए लगातार बातचीत की आवश्यकता है।
For its part, the World Food Program today said it is deeply concerned about the impact of conflict on Ukraine's food security and the waning ability of families in embattled areas to feed themselves.
New South Wales के बाढ़ प्रभावित उत्तरी नदियों के क्षेत्र में निवासियों की मदद के लिए 120 मोटर होम का एक काफिला भेजा गया है। राज्य के प्रीमियर डोमिनिक पेरेटे ने 9 नेटवर्क को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताएं बताई।
To me, the top priorities here are getting the clean-up done, getting people into homes, and getting financial support out for those who need it.
मोटरहोम न्यू साउथ वेल्स रूरल फायर सर्विसेज के स्वयंसेवकों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से पहले 20 के रविवार तक पहुंचने की उम्मीद है। राज्य और फेडरल सरकार ने 25,000 घरों के लिए $551 मिलियन का आवास सहायता पैकेज आवंटित किया है। क्वींसलैंड सरकार अन्य राज्यों के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से अपील कर रही है कि वो सहायता के लिए क्वींसलैंड में स्थानांतरित हो जाएं। प्रीमियर एनेस्थीसिया पेलिशे का कहना है कि व्यापारियों यानी ट्रेड के लिए बहुत सारा काम उपलब्ध है।
I really want to target an aggressive campaign into other states, not New South Wales, because they're going through natural disasters, but we want tradies to come to Queensland. We've got a big job ahead of us. Already there's $1 billion in insurance claims alone to rebuild people's houses. And let's face it, we have more than enough work to go around. So if you're living in another state, we want you to come to Queensland. We want you to run to paradise, to come to paradise.
विक्टोरियन लेबर सेनेटर किम्बर्ली कीचिंग को राजनेता श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुश्री कीचिंग का 52 वर्ष की आयु में मेलबर्न में अचानक निधन हो गया। लेबर पार्टी के नेता एंथनी एल्बनीसी का कहना है कि पार्टी स्तब्ध है और कई सहयोगी सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि पोस्ट कर रहे हैं। सुश्री कीचिंग, जिनकी मृत्यु कल गुरुवार को एक संदिग्ध दिल का दौरा पड़ने से हुई, वो 2016 में सीनेट में शामिल हुई थीं और उन्हें उनके एडवोकेसी काम के लिए याद किया जा रहा है। लेबर के बिल शॉर्टन ने एबीसी को बताया,
सो वी हैव लॉस्ट समवन हु इज अ वेरी गुड पर्सन। शी इज अ फ्रेंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। शी इज अ वेरी वार्म पर्सन। शी कुड लाइट अप अ रूम। शी कुड टॉक टू एनीवन। She used to represent health workers, but she could sit down and talk to anyone from any walk of life.
जापानी इंकेफेलाइटिस के प्रकोप से निपटने के लिए लगभग $70 मिलियन खर्च किए जा रहे हैं, जो पहले से ही 4 ऑस्ट्रेलियन राज्यों में पाया गया है। सरकार पहले ही ऑस्ट्रेलिया में मौजूद 15,000 खुराकों के अलावा वैक्सीन की 130,000 खुराक खरीदेगी। ऑस्ट्रेलिया की उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनिया बेनेट का कहना है कि प्रभावित पिगरीज में काम करने वालों को सबसे अधिक खतरा है।
Those most at risk and recommended for vaccination are being identified by public health authorities, and they are really people who work in the affected piggeries at the moment, and those going in and doing mosquito and animal control in those piggeries.
भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर लोगों का आभार माना है। पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को बधाई और आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम ने ही एनडीए को जीत दिलाई है और इन चुनावों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। और अपात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 73 सेंट और भारत के 56 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में, ब्रिटेन चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक और रॉसनेफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संबंधों के कारण प्रतिबंध लगा रहा है। ये उस आलोचना की प्रतिक्रिया है कि रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन में घुसने पर ब्रिटेन की प्रतिक्रिया धीमी रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने विशिष्ट व्यक्तियों पर टिप्पणी नहीं करते हुए कहा कि रूस के नेता से संबंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति का मतलब है कि सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री। एडिलेड में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। मेलबर्न में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। होबार्ट में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। कैनबरा में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। सिडनी में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। और डार्विन में एक दो बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।